धौला पुस्तक आठवी लेक्चर नंबर आठ। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयरियाणम्। नमो वच्छायाणम्। नमो लोए सौवसाहूणम्। साहु वच्छायिरिये अरहंते वंद्यूण सिद्धेवि। जे पंच लोग वाले वोच्छं बंधस्य सामित्तम्। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इस षटखंडागम का यह तृतीय खंड है, तीसरा, और इसका नाम है बंध स्वामित्व विचय। बंध के स्वामित्व संबंधी यानी बंधक जीवों संबंधी यहाँ विशेष मीमांसा कहो, परीक्षा कहो, विचारणा कहो, उसकी चर्चा चल रही है। पहले में पूछा गया था, देखो जो कर्मों के जो नाम है उसकी ऑर्डर कैसे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, फिर आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। रियल में ही है, परंतु जब घाती अघाती भेद करते हैं तो हम ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय कहते हैं। परंतु जब कर्मों के नाम, उसके लिए कारण है, वो भी हमने कर्मकांड में देखा था, उसका कारण क्यों है। जैसे कर्म बनते तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, या जो सुख दुख में निमित्त है तो इसलिए उसकी बात पहले करते हैं, उसको तीसरा नंबर में दे दिया था। तो पहले में पहले जो हमने ज्ञानावरण की बात है ना, तो पांच ज्ञानावरण और उसके साथ जो कुछ बनती है, 16 प्रकृति कहाँ तक बनती है, उसके साथ विच्छित्ति 10वें तक, उसकी बात पहले पूछे उन्होंने। इनके बंधक कौन है, अबंधक कौन है, उसके लिए पहले से 10 गुणस्थान की वो बात हमने, जो 23 प्रश्न है उसकी चर्चा की। उसके बाद अभी दर्शनावरण की तो 4 हो गई थी, है ना, अब बाकी की बात करनी थी, तो पहले 3 निद्रा की बात ली, इसलिए दूसरे गुणस्थान में जिन प्रकृतियों की विच्छित्ति, विच्छित्ति यानी बंध रुक जाना, वो सारी एक साथ ली, 25 प्रकृतियां। तो अभी दर्शनावरण में से 4 और 3 7 हो गए, अभी 2 बचे, निद्रा और प्रचला, फिर उसकी बात पहले बताई, इसलिए 8वें गुणस्थान की पहले भाग की बंध विच्छित्ति बताई। अब ज्ञानावरण हो गए, निपट गए, दर्शनावरण हो गए, अब साता वेदनीय यानी निद्रा प्रचला के बाद साता वेदनीय की बात पूछे, तो 13वें गुणस्थान तक बनती है, यहाँ तक होगी। अभी वेदनीय का दूसरा भेद है कौन सा, असाता, अब उसकी बात पूछेंगे, उसके बंधक कौन है और अबंधक कौन है, फिर उस पर सारे प्रश्नों की चर्चा चलेगी, क्या उसका उदय पहले रुकता है, क्या बंध पहले रुकता है, क्या सांतर है, क्या निरंतर है, ये सब चर्चा चलेगी। अपने उदय में बनती है, क्या परोदय में बनती है, क्या स्वपरोदय में बनती है, ये इसकी चर्चा भी होगी। अब हम आए हैं 8वें पुस्तक के पृष्ठ संख्या 40 पर, 40। यहाँ नया जो सूत्र है उसको पढ़ने जा रहे हैं, 13 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे अभी। अब असाता वेदनीय की बंध विच्छित्ति कहाँ है, 6ठे में। तो 6ठे में जिनकी बंध विच्छित्ति, वो सभी प्रकृतियां एक साथ पूछेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये सारी प्रकृतियां कहाँ से, पहले से लेकर 6ठे तक बनती है, ये उनको कहना है। अब हम पढ़ेंगे इस सूत्र को। असाता वेदनीय अरदिसो, प्राकृति पढ़ने में असाधा वेदनीय अरदि सोग अथिर असुह अजस कित्ति नामानम को बंधो को अबंधो। अब उसका हिंदी, असाता वेदनीय अरति शोक अस्थिर अशुभ और अयश कीर्ति नाम कर्म का कौन बंधक और कौन अबंधक है। ये सारे अ वाले एक शोक अलग है ना, तो ये 6 प्रकृतियां 6ठे गुणस्थान में बंध से, यानी 6ठे में बनती है, 7वें से आगे नहीं बंधेगी, तो उसको क्या कहेंगे, छठे गुण स्थान में इसकी बंध विच्छित्ति होती है। तो बंध कहाँ से कहाँ तक होगा वो बताएंगे आगे के नेक्स्ट सूत्र में, वो बताएंगे। अभी यहाँ पढ़ते उसका, यह पृच्छा सूत्र देशामर्शक है। पृच्छा यानी प्रश्न, प्रश्नात्मक सूत्र है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि उसके बंधक कौन है और अबंधक कौन है, इसलिए यहाँ सब प्रश्नों को करना चाहिए। सब इन्हें हमने 23 प्रश्न देखे थे, वो सब प्रश्न यहाँ पूछने चाहिए। अथवा यह आशंका सूत्र है ऐसा समझना चाहिए, उसके निश्चय उत्पादनार्थ उत्तर सूत्र कहते हैं। यानी अभी जो शंका या आशंका है तो उसका निवारण करने, यानी उसके उत्तर देंगे, ये प्रश्नों के उत्तर रूप यहाँ सूत्र कहेंगे। सूत्र में 2-3 बातें बताएंगे, उसमें 23 के 23 प्रश्नों के उत्तर वो निकाल के बताएंगे। अब पढ़ेंगे ये सूत्र 14 नंबर का। ये 23 हमने बहुत बार रिपीट किए ना प्रश्न, हाँ। अब उसका जब एक्सप्लेनेशन आएगा तो फिर हो जाएगा। कहते मिच्छा इट्ठी पहुड़ी जाव पमत्त संजदा बंधा एदे बंधा अवशेषा अबंधा। मिथ्या दृष्टि से लेकर, यानी मिथ्या दृष्टि ये गुणस्थान का नाम है, हम उसको मिथ्या तो गुणस्थान भी कह सकते हैं, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान भी कहते हैं। तो पहले गुणस्थान से लेकर प्रमत्त संयत तक, यानी वो छठे गुणस्थान तक बंधक है, ये बंधक है, शेष जीव अबंधक है। यह देशामर्शक सूत्र है। देशामर्शक का अर्थ क्या देखा था, थोड़ा बताया है, उसमें बहुत सारी बातें गर्भित है, क्योंकि वह पूछे हुए अर्थों के एक देश को छूकर अवस्थित है। क्योंकि पूछे हुए 23 प्रश्न उसमें गर्भित थे और उसमें से उन्होंने 2-3 ही बातें यहाँ बता दी कि उसकी अध्वाने ने कहाँ से कहाँ तक बनती है वो बात बताई। इस कारण इसके द्वारा सूचित अर्थों की प्ररूपना की जाती है। इसलिए वीरसेन स्वामी जो टीकाकार है महाराज, जो आचार्य हुए हैं, तो वो इसको खोलकर बता रहे, क्योंकि वो तो सूत्र और उनके अर्थ गुरुओं से वो प्राप्त थे तब तक। ऐसा था वेदनीय। पहला प्रश्न क्या था कि पहले बंध विच्छित्ति होती कि उदय विच्छित्ति, तो बंध कहाँ तक है, छठे तक, और उदय कहाँ तक है, 14वें तक। किसी जीव को 14वें में साता का उदय, किसी को असाता है। देखो असाता वेदनीय का पूर्व में बंध और पश्चात उदय विच्छिन्न हो जाता है, विच्छिन्न होता है नष्ट होता है, यानी उदय आगे तक चलता है उसका, क्योंकि प्रमत्त गुणस्थान में बंध विच्छेद हो जाने पर पीछे अयोग केवली के अंतिम समय में उदय का विच्छेद हो जाता है। क्योंकि किसी जीव को साता का उदय है 14वें गुणस्थान में, किसी को असाता का है। असाता ने हमें जो बाहर की जो दुखमय परिस्थिति देखते हैं, ऐसा नहीं उसका अर्थ। कर्म असाता रूप में बंधा था, अब जो सम्यक तो हुआ तब से लेकर उसका अनुभाग अत्यंत मंद हो रहा है, नहीं के बराबर, परंतु वो कौन सा है, असाता है। केवली को उसको कोई दुख नहीं है, हाँ, केवली के ना रोग होते हैं, ना क्षुधा होता है, ना तुषा होता है, ना कुछ होता है। उदीर्णा तो इनकी कहाँ रुकी है, छठे तक, छठे में साता की भी असाता की उदीर्णा, उदीर्णा यानी वो अधिक परमाणु फिर के तीव्र उदय आना, ये तो वहीं पर रुक जाती है। और वो साता वहां बंध रही थे तब तक तो असाता भी सारे उसका अनुभव हीन 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 होते होते नहीं के बराबर हो जाता है, फिर भी असाता का उदय कहलाएंगे वहां तक। देखो उनके तो ये तो जो कोई है कर्म, वो कैसे है, धूल ढेर की जैसे है, उसमें तो कुछ, उसमें उनका तो कुछ राग द्वेष के परिणाम नहीं है, ना इंद्रिय सुख दुख उनके है यहाँ पर, इसलिए उसका कार्य वहां नहीं देखना। ख्याल में है बात, उदय है वो केवली गम्य है, उसकी बात बताई जाती है। तो उसका उदय कहाँ तक है, तो 14वें तक। अस्थिर और अशुभ प्रकृतियों का भी इसी प्रकार ही बंधोदय विच्छेद कहना चाहिए, यानी बंध पहले रुकता है बाद में उदय। परंतु अस्थिर और अशुभ जिसको हम कहते हैं, ये कैसी प्रकृतियां हमने देखी थी, ध्रुवोदय, स्थिर भी और अस्थिर भी, शुभ भी और अशुभ भी, कहाँ तक है उसका उदय, 13वें तक है। क्या नहीं पढ़ा, ऊपर की, सॉरी सॉरी हाँ, इसी प्रकार अरति शोक का रह गया, वो मैं पढ़ती हूँ अभी, चौथी लाइन रह गई थी। इसी प्रकार अरति और शोक का बंध पूर्व में और उदय पश्चात विच्छिन्न होता है। आपको याद है अरति शोक की उदय विच्छित्ति कहाँ है? छ न उदय की आठवें में, क्योंकि छ नौकशाय की उदय विच्छित्ति आठवें के अंत में होती है, हमने देखा था, याद है ना। और वे तीन वे तो नवे में चले जाते हैं। तो यह कहते हैं अरति और शोक का बंध पूर्व में, पेज नंबर 41, और उदय पश्चात विच्छिन्न होता है, यानी बाद में रुक जाता है उदय, क्योंकि प्रमत्त संयत में बंध के नष्ट हो जाने पर, प्रमत्त संयत में बंध है, सातवें से आगे बंध नहीं है, फिर भी उदय रहता है, पीछे अपूर्वकरण के अंतिम समय में उदय का विच्छेद हो जाता है। आप कहेंगे अरति और शोक, तो क्या मुनिराज शोक करते होंगे क्या? ऐसा उसका अर्थ नहीं लेना, ये कर्मों के उदय रूप बातें हैं, और आगे के गुणस्थान तो अंतरंग में स्थिरता वाले हैं, सातवा है आठवा है श्रेणी के हैं, तो उसमें तो वो तो उनके अबुद्धिपूर्वक में जो कुछ चल रहा है कर्म का उदय बताया जाता है, बस इतना ही है उसमें, यानी उनके वो अरति के और शोक के परिणाम होते होंगे ऐसा उसमें नहीं लेना। वो तो बहुत ज्यादा है, ये तो बुद्धिपूर्वक है, जो आपके आपके ख्याल में आता है ना वो बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक जो अपने ज्ञान में आए वो बुद्धिपूर्वक, हाँ, और वो ही दिखता है, और उसके आगे उसके साथ अबुद्धिपूर्वक जो है वो आपको नहीं दिख रहा है। अबुद्धिपूर्वक उसको कहते जो अपने ही ज्ञान में नहीं आ रहे, अपने में हो रहे अपने ज्ञान में नहीं आ रहा है, ऐसे वो सूक्ष्म टाइप का वहां चल रहा है, राग द्वेष के परिणाम चल रहे सारे ही। और ये अरति शोक भी ऐसा है ना, उलट पुलट कर उसका उदय होता है, कभी अरति शोक कभी हास्य रति, ये तो चलता रहता है, बंध भी और उदय भी। तो कहते बंध पूर्व में और उदय पश्चात विच्छिन्न होता है, क्योंकि प्रमत्त संयत में बंध के नष्ट हो जाने पर पीछे अपूर्वकरण के अंतिम समय में उदय का विच्छेद होता है। पहले हमने उदय की विच्छित्ति सबकी याद की थी, है ना। अस्थिर और अशुभ प्रकृतियों का भी इसी प्रकार ही बंधोदय विच्छेद कहना चाहिए। अरतिशोक का उदय तो आठवें तक है, परंतु अस्थिर और अशुभ का तेरहवें के अंत तक है, क्योंकि प्रमत्त संयत में बंध के नष्ट होने पर संयोग केवली के अंतिम समय में उदय का विच्छेद होता है। असाता वेदनीय का हमने अयोगी के अंतिम समय में देखा, यह अस्थिर और अशुभ का संयोगी के अंतिम समय में। अयश कीर्ति का अभी इसमें उल्टा पुल्टा है, अयश कीर्ति का पूर्व में उदय विच्छिन्न होता है और पश्चात बंध, क्योंकि अयश कीर्ति अभी यहाँ छठे तक बंध रही है, और उदय हमने चौथे में उदय की विच्छित्ति देखी थी। क्योंकि असंयत समय दृष्टि गुण स्थान में उदय के नष्ट होने पर पीछे प्रमत्त संयत गुण स्थान में बंध का विच्छेद होता है। इस तरह हमने वो असाता वेदनी से लेकर उसके साथ जो बंध विच्छित्ति होती है छठे गुण स्थान वाली, उसकी हमने चर्चा की थी, यानी ये सब छठे गुण स्थान के बंध विच्छित्ति वाले हैं। अभी तक हमने ज्ञानावरण दर्शनावरण और वेदनी तीनों की सभी भेदों की बात हो गई, अब किसका नंबर आएगा? मोहनी का। अभी मोहनीय में हमने ये जो हमने देख चुके हमने प्रकृतियां, उसमें मोहनी की कितनी प्रकृतियां गई? हाँ, अनंतानुबंधी गई, नहीं गया मिथ्यात्व का, कहाँ गया मिथ्यात्व को अलग से नहीं बताया है। मिथ्यात्व पहले गुणस्थान की 16 प्रकृतियों की बात नहीं हुई है, ख्याल में है ना, वो अब होगी। हाँ अभी उसके तो बाद में आए, पहले ये कुछ प्रकृतियां जो रहे यानी उसके प्रश्न है ना, उसकी चर्चा चलेगी। हाँ अब कहते हैं ये जो प्रकृतियां कौन से पहले बंध विच्छित्ति होते उदय विच्छित्ति होती होते बताइए। अब प्रश्न क्या है, अपने उदय में बनती है क्या पर के उदय में बनती है? अब असाता वेदनी की बात करेंगे, अशातावेदनीय का उदय है तब अशातावेदनीय बंधेगी कि नहीं बंधेगी? बन सकती है ना। और साता का उदय में बनतेगी कि नहीं बंधेगी? बनती है। यानी स्व के भी उदय में बंधेगी, पर के उदय में भी बंधेगी। देखो, अशातावेदनीय अरति व शोक प्रकृतियां स्वोदय परोदय से बनती है, क्योंकि इनका उदय ध्रुव नहीं है। उनका उदय ध्रुव नहीं का अर्थ क्या है? ये उदय भी कंटिन्यूस नहीं होता है। जैसे बंधने वाले भी प्रतिपक्षी प्रकृतियां होती है, तो इनका उदय ध्रुव नहीं है। जैसे ज्ञानावरण का उदय कैसा है? ध्रुव। पहले गुणस्थान से बारहवें तक उसका ध्रुव उदय है। और ये प्रकृतियां कैसी है? प्रतिपक्ष वाली तो है ही है, बंधने में उदय में भी वो ध्रुव नहीं है, ये कहना चाहते। इसी प्रकार अयश कीर्ति भी स्वोदय परोदय से बनती है। क्योंकि उदय की अध्रुवता की अपेक्षा इसके उक्त तीनों प्रकृतियों से कोई भेद नहीं। परंतु आप अभी ऐसा सोचो, चौथे गुणस्थान में उसकी उदय की विच्छित्ति हुई है, तो पांचवें गुणस्थान वाले को, छठे गुणस्थान वाले को अभी जो यश कीर्ति का ही उदय है, फिर भी अयश कहाँ तक बन रही है? छठे तक। यानी पांचवें और छठे वाले को वो यश के उदय में अयश बन रहा है। ख्याल में आई बात? फिर से सोचो, पहले दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थान में कभी यश का उदय है, कभी अयश का उदय है, तो स्वोदय में भी बन सकती है, उपरोदय में भी बन सकती है, स्वपर उदय में बनती है। पांचवें छठे वाले को क्या पोजीशन है? उसके यश कीर्ति का ही उदय कंटिन्यूअस चल रहा है, परंतु वहां अयश का बंध है ना, क्योंकि छठे तक बनती रहती है। हमने देखा था ये बात, यहां बताएंगे। देखो फिर से पढ़ती पहली लाइन, इसी प्रकार अयश कीर्ति भी, अभी उसको अलग से क्यों लिखा, उसमें बताना था तो उसकी कुछ विशेषता भी बताएंगे। स्वोदय परोदय से बनती है क्योंकि उदय की अध्रुवता की अपेक्षा इसके उक्त तीनों प्रकृतियों से कोई भेद नहीं। वो उदय की अध्रुवता कहां तक है? चौथे तक है, यश का या अयश का उदय होता है। विशेष इतना है कि संयता संयत से लेकर आगे इसका बंध परोदय से ही होता है, ही करो। आगे ने कहां तक? क्योंकि बनती कहां तक है? छठे तक। तो पांचवें और छठे गुणस्थान में इसका बंध है वो परोदय से ही हो रहा है, क्योंकि वहां यश कीर्ति को छोड़कर अयश कीर्ति का उदय नहीं रहता। उदय यश कीर्ति का, और हो सकता है कि अयश कीर्ति बंधे, ये बात हो सकती है। अब अस्थिर और अशुभ की बात करें। अस्थिर और अशुभ प्रकृतियों का बंध स्वोदय से ही होता है क्योंकि वे ध्रुवोदयी प्रकृतियां। क्या कहना चाहते हैं? स्थिर या अस्थिर बंधने में वो अल्टरनेटली बनती है। स्थिर अस्थिर स्थिर अस्थिर बंधेगी, जब तक उसकी बंध विच्छित्ति नहीं होती ना, तब कभी स्थिर बंधेगी कभी अस्थिर बंधेगी, इन दोनों में से, क्योंकि वो प्रतिपक्षी प्रकृति है। परंतु यहाँ क्या कहते हैं? उदय किसका है? उदय दोनों का एट ए टाइम चलता है। कब से कब तक? पहले गुणस्थान से तेरहवें गुणस्थान तक ये ध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं। ध्रुवोदयी प्रकृतियां गिनाएंगे? बारह है, याद है? हाँ, तेजस शरीर, कारमान शरीर, हाँ हाँ, वर्णादि चार, हाँ, सिर अस्थिर, शुभ अशुभ, अगुरलगर निर्माण, ये बारह प्रकृतियां ध्रुवोदयी है। ध्रुवोदय ने हर समय उसका उदय है, किसी भी गति में हो। विग्रह, ये जो यहाँ से मरकर जाता है दूसरे भाव में, विग्रह गति में भी इनका उदय तो कंटिन्यूस रहेगा। तेरहवें गुणस्थान तक इसका उदय है, इसको क्या कहेंगे? ध्रुवोदयी प्रकृतियां। तो और बंधने में कभी अल्टरनेटली बनती है, तो इनका अपने उदय में ये बंध रही है, इतनी बात यहां लेनी है। देखो फिर पढ़ते इसको, चौथी लाइन, अस्थिर और अशुभ प्रकृतियों का बंध स्वोदय से ही होता है क्योंकि वे ध्रुवोदयी प्रकृतियां हैं। आप कहेंगे स्थिर का भी तो उदय हो रहा है, पर परोदय से कहने में अपने उदय में नहीं और पर, ऐसा उसका अर्थ होता है। अपना उदय तो चल ही रहा है, तो स्थिर का होता है कि नहीं हमारी चर्चा का विषय नहीं है, वो अपने उदय में बनती है कि नहीं बनती, बस इतना देखना है। इन छह प्रकृतियों का, ये जो छह प्रकृतियां छठे गुणस्थान की जो हमने देखी, असाता वेदनीय, अस्थिर, अशुभ, अरति और शोक, है ना, हो गया क्या? छे असाता वेदनीय लिया, अरति लिया, शोक लिया, अस्थिर, हाँ, अशुभ और अयश कीर्ति, ये छह लिए। इन छह प्रकृतियों का मिथ्या दृष्टि आदि छह गुणस्थानों में कैसा बंध होता है? सांतर बंध होता है। सांतर क्यों होता है? प्रतिपक्ष है इसलिए। इसका कारण यह है कि यहाँ इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंध विच्छेद का अभाव है, यानी वो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में प्रतिपक्ष बंधेगी, कभी ये बंधेगी, कभी इसको कहेंगे सांतर, अंतर सहित बंधेगी। ज्ञानावरणादि 16 प्रकृतियों के जो प्रत्यय इन गुणस्थानों में कहे गए हैं, हमने प्रत्येक गुणस्थान में बंध के प्रत्यय जो देखे थे, मूल प्रत्यय टोटल कितने थे? चार, मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, और उत्तर प्रत्यय टोटल 57 देखे थे। मिथ्यात्व के 5 भेद, असंयम के 12, कषाय 25, 16 कषाय और 9 कषाय, और योग 15 जुदे जुदे। अब कौन से गुणस्थान में कौन से होते हैं उसकी बात यहाँ बतानी है कि इतने प्रत्ययों से, इतने कारणों से यहाँ बनती है। जैसे यहाँ किसकी बात चल रही, मान लेते हैं अस्थिर की बात करेंगे, अस्थिर जो प्रकृति बन रही है तो पहले गुणस्थान में कौन से कारणों से बन रही है और छठे में कौन से कारणों में बन रही है, उसमें डिफरेंस है कि नहीं, तो ये कारण हमको बताना है। तो मिथ्या तो गुणस्थान के प्रत्यय बताएंगे, हाँ 50, मूल प्रत्यय 4 और उत्तर प्रत्यय 50, और एक जीव की अपेक्षा भी बताए थे आपको याद होगा तो, मिनिमम और मैक्सिमम, हाँ पहले 55, आपने 50 किया, हमने भी 50 कह दिया, 55 अच्छा किया, हाँ 57 में से 55 आहार आहार कंगो है, मिश्र नहीं है, उसमें एक जीव की अपेक्षा एट ए टाइम कितने होते, हाँ 10 और 18। अब दूसरे गुणस्थान में इसमें 5 नहीं होते, 55 में से 5 नहीं होगी तो 50 हो जाएगी, वो तो मूल प्रत्यय तो 3 ही हो गए, मिथ्या तो चला गया, और उत्तर प्रत्यय हो गए 50, और मिनिमम 10 है, वहां हमने अनंतानुबंधी को छोड़ा था, उसकी विसंयोजना वाला लिया था, यह मिथ्या तो को छोड़ना, अनंतानुबंधी को लेना, तो मिनिमम 10 मैक्सिमम 17। तीसरे गुणस्थान में अब अनंतानुबंधी भी नहीं रहेंगे, है ना, मूल प्रकृति नहीं, मूल प्रत्यय 3, हाँ हाँ 9 और 16 हो गए का 14 हो गए, 14 हाँ मिश्रण, और उसमें लेना है चौथे में उतने ही लेनी है, चौथे की भी उतनी ही थी, एक जीव की अपेक्षा उतनी होती ना, एक योग तो होता है एट ए टाइम, वहां तो हमने 43 देखे थे और यहाँ 46, पर वो नाना जीवों की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा देखना है तो मिनिमम 9 हमने देखे थे, 14 17 नहीं 16 मैंने कहा था, 26 पेज, सोलह है ना, नौ और 16 है, हाँ वही तो, आप 14 14 कर रहे हैं, देखो देखो 9 और 16 है, फिर 8 के साथ वो 14 हो जाता है, क्योंकि जब पांचवें गुणस्थान में क्या होता है, त्रस्काय वाला चला जाता है, उसमें वो कम हो जाता है, यानी कषाय भी कम होता है और वहाँ संयम भी एक कम होता है, इसलिए वहाँ 8 और 14 लिया था पांचवें गुणस्थान में। पांचवें गुणस्थान में टोटल कितने देखे थे याद है? मूल प्रत्यय तो ये संयमा संयम वाला एक, कषाय और हाँ कषाय और योग, हाँ 37 थे, यहाँ 46 थे वो 37 थे। और उत्तर प्रत्यय हमने देखा था, उत्तर प्रत्यय ने एक जू की अपेक्षा 8 और 14, मिनिमम 8 मैक्सिमम 14। फिर छठे गुणस्थान में अभी आहार कारक मिश्र उसमें इंक्लूड कर देना है, हाँ। तो वहां हमने देखा था पांच और सात थे ना, यहाँ 8 और 14 में से 5 और 7 रह गए थे वहां, क्योंकि असंयम कोई नहीं रहा छठे गुणस्थान में, असंयम नहीं है ना मिथ्यात्व है, तो क्या रह गया? एक कषाय, एक युगल और एक वेद। देखो एक कषाय एक वेद दो युगल, भाई जुगुप्सा नहीं लेंगे तो ये 4 हो जाएंगे और एक योग, तो 5 एट एक जीव के एट ए टाइम या 7। हाँ भाई जुगुप्सा दोनों को लेंगे तो ये छठे में हुआ। अब ये छठे तक ही देखना है ना, क्योंकि ये छठे गुणस्थान के बंदे उचित ही देख रहे थे। पेज नंबर 42 पर है हम, देखो यहाँ ऊपर से 3, 3, 6, 7वीं लाइन ज्ञान, पेज नंबर 42, ज्ञानावरणादि 16 प्रकृतियों के जो प्रत्यय इन 6 गुणस्थानों में कहे गए हैं, उन्हीं प्रत्ययों से ही ये 6 प्रकृतियां बनती है, क्योंकि प्रत्यय में कोई अंतर नहीं प्रकृति वाइज, जो कुछ प्रकृतियां बनती है वहां के प्रत्यय वहां बता दिए। अब असाता वेदनीय अरति और शोक प्रकृतियों को मिथ्या दृष्टि जो अभी किस गति के सहित बन रही है, तो कहते 4 गतियों से संयुक्त, यानी देवगति के साथ असाता वेदनीय बनती है कि नहीं बनती है? बनती। कब नहीं बनती मेरा प्रश्न है, हाँ जब देवायु का बंद कर रहा है उसके साथ देवगति बंधेगी उस समय वो सातावेदनीय बनता है, अदरवाइज हर अंतर्मुहूर्त में देवगति कभी नरगति कभी बंधे है तो उसके साथ असाता बन सकती है, साता असाता दोनों बन सकती है, पर नरगति के साथ तो असाता ही बंधेगी ये नक्की है। तो ये तो 4 गति संयुक्त बांधता है। सासाधन समय दृष्टि, अभी उसको नरक गति बनती ही नहीं है, वैसे भी नरक गति को छोड़कर 3 गतियों से संयुक्त, क्योंकि सासाधन वाला 3 गतियां बांधता है तो 3 गतियों से सहित वो असाता का भी बंद कर सकता है। सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत समय दृष्टि देव मनुष्य से गतियों से संयुक्त, वहां तो 2 ही गतियां बनती है, जो तीसरे चौथे गुणस्थान वाले तीरियंच मनुष्य है वो देवगति बांधेंगे और देव नारकी है वो मनुष्य गति बांधेंगे, इसलिए ये 2 गति से सहित बनता है। तथा उपरिम जीव देव गति से संयुक्त बांधते, उपरिम का अर्थ क्या है ब्रह्मा? पांचवे से जो ऊपर, यानी पांचवा छठा, हमारे लिए पांचवा छठा ही लेना है ना, हम छठे तक बात कर रहे हैं, तो देव गति से संयुक्त बांधते। इसी प्रकार अस्थिर अशुभ और अयश कीर्ति प्रकृतियों का भी गति संयुक्त बंध जानना चाहिए, क्योंकि कौन से गुणस्थान वाला कौन सी गतियां बांधता है ये तो नक्की है, क्योंकि उनसे इनके कोई भेद नहीं है। अब स्वामी पूछेंगे बांधने वाले जीव कौन से गति के है, ये पूछ रहे हैं, कहते मिथ्या दृष्टि गुणस्थान 4 गति में होता है, तो 4 गतियों के मिथ्या दृष्टि, चौथे गुणस्थान तक तो 4 गतियां है ना, सासाधन सम्य दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्य दृष्टि स्वामी है, बांधने वाले जीव कौन है उसकी बात है। दो गतियों के संहिता संयत स्वामी है, मनुष्य और तीरियंचों में पांचवा गुणस्थान होता है, और प्रमत्त संयत मनुष्य ही स्वामी है। हमें तो यहां तक ही बात करनी है, ये बंध विच्छित्ति छठे की है। बंध अध्वान ये तो सूत्र में बताया था, मिथ्या दृष्टि से लेकर प्रमत्त तक करके, और बंध विच्छेद स्थान सुगम है, यानी छठे के अंतिम समय तक समझना। अब ये सादी अनादि जो बात है, ये छह प्रकृतियां बंध से सादी एवं अध्रुव है। ऐसा क्यों कहा आपको, उसका कारण बताना है। मनीषा बताएंगी कि ब्रह्मा बताएंगे, सादी क्यों कहा इनको, कौन कौन सी वो असाता वेदनीय अस्थिर अरति शोक वगैरह वगैरह सारी अयश कीर्ति। हाँ वो प्रतिपक्ष वाली है, इसलिए उसका सादी ही बंध होता है, अनादि के नहीं है। और दूसरी बात, अरे बंध रुकता है फिर होता है फिर रुकता है, बंध तो अध्रुव है, इसलिए सादी और अध्रुव है। ख्याल में आई बात।
अब
हाँ सब प्रतिपक्ष सादी होगी, अध्रुव ही होगी। हाँ क्योंकि उनका बंध रुकता है चल आ जाता है ना। अभी तक हमने ज्ञानावरण की सभी प्रकृतियां अलग अलग देखी, ये दर्शनावरण की हो गई, वेदनीय की भी हमने साता साता दोनों की हो गई, अब मोहिनी का नंबर है। अब मोहिनी की सभी प्रकृतियां पूरी करेंगे, मोहिनी में से कुछ तो हमने देख लिया अनंत अनुबंधी वगैरह, अब जो रह गई है उसकी बात यहाँ करेंगे। तो मिथ्यात्व को पहला नंबर लेंगे, तो मिथ्यात्व के साथ जो बंध विच्छित्ति होती वो पूरी लिस्ट यहाँ बताएंगे। कितनी थी याद है? हाँ वही वही, हाँ वही वही 16 है। हाँ मिथ्यात्व सहित भी जो मिथ्यात्व को इंक्लूडिंग करके 16 बंध विच्छित्ति होती उसकी चर्चा यहाँ होगी। अनंतानुबंधी दूसरे में है, वो 25 में गिनी थी है ना। अब पढ़ेंगे ये सूत्र को। मिच्छत्त नौंस वेद निरयाउ निरय गई एन्द्रिय बेन्द्रिय तीन्द्रिय चौरिन्द्रिय जादि हुंड संठान असंपत्त सेवठ शरीर संगणन निरय गई पावगाण पूवी आदाव थावर सुहम अपज्जत सहारण शरीर नामानम को बंधो को अबंधो। अब ये जो 16 बंध विच्छित्ति वाली जो पहले गुण स्थान में बंध की विच्छित्ति होती है, तो बंधक कौन है? मिथ्या दृष्टि बंधक है, अन्य कोई बंधक नहीं है। अभी हिंदी में पढ़ते मिथ्यात्व नपुंसक वेद नारकायु नरक गति एकेन्द्रिय द्विन्द्रिय तीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय जाति हुंड संस्थान असंप्राप्त सुपाटिका सहनन नरक गति प्राज्ञान पूर्वी आताप स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण शरीर नाम कर्म का कौन बंधक है और कौन अबंधक है। हमने अलग ऑर्डर से याद किया था, उसका कारण कुछ अलग है। यह पृच्छा सूत्र देशामर्शक है। अब इसमें से वो सारे ही 23 के 23 प्रश्नों के उत्तर हमें चाहिए, इसलिए यहाँ पूर्वोक्त सब प्रश्नों को करना चाहिए। पूछने वाले शिष्य का संशय नष्ट करने के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं, यानी वो सब बनने कहाँ से कहाँ तक बनते, तो मात्र मिथ्या दृष्टि में बनते हैं। उदय पहले रुकता है क्या बंध पहले रुकता है? हाँ अभी हर एक प्रकृति को अलग सोचना पड़ेगा। मिथ्यात्व का तो बंध और उदय दोनों साथ में पहले गुण स्थान में होता है। नपुंसक वेद का पहले क्या रुकेगा? बंध के उदय, बंध पहले में रुकता है और उदय तो 9वें तक चलता है। अभी ऐसे एक एक प्रकृति पर ये बातें सब हम घटित करेंगे। अब यहाँ पढ़ते हैं क्योंकि दूसरा सूत्र पहले पढ़ेंगे, उसमें सारे प्रश्नों के जवाब। बंध सारा है, हाँ उदय यथा योग्य है। हाँ उदय को देखना है, मिथ्यात्व का उदय यहीं तक है, बाकी प्रकृतियों के आगे तक जो उदय है उसको वहां तक बताना पड़ेगा। देखो 16 नंबर का सूत्र, मिच्छा इट्ठी बंधा एदे बंधा अवशेषा अबंधा। मिथ्या दृष्टि जीव बंधक है, ये बंधक है, शेष जीव अबंधक है। अभी अध्वान की बात ही नहीं भाई, एक अकेला मिथ्या तो गुणस्थान में ही उसका बंधक होता है। यह देशामर्शक सूत्र है क्योंकि वह बंध स्वामित्व और बंध अध्वान इन दोनों का ही प्ररूपण करता है, यानी मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में ही बनती है, यही उसकी सीमा है, ऊपर के कोई गुणस्थान में बनती ही नहीं है। इस कारण इससे सूचित अर्थों की प्ररूपणा करते हैं। अभी उसमें से एक एक प्रकृति को सोचकर हम बंद पहले रुकता है क्या उदय पहले रुकता है वो देखेंगे, पढ़ने के पहले पहले हम डिराइव करेंगे। मिथ्यात्व की बात हमने देखी, बंद और उदय एक साथ रुकता है, नपुसक वेद अभी सारे ही बंद पहले गुणस्थान में रुकते कहने की जरूरत नहीं है। उदय कहाँ तक है वो देखो, नवमी तक है। नारकयुग का उदय नारकी चौथे गुणस्थान वाले हो सकते हैं ना, हाँ चौथे तक, नरक गति का भी चौथे तक, एक इंद्रिय का क्या, एक इंद्रियों को समय दर्शन होता है क्या, पहले गुणस्थान में उदय विच्छित्ति है, पहले गुणस्थान की उदय विच्छित्ति बताओ, बोलो बोलो बोलो, मिथ्यात्व एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय, हाँ स्थावर भी कह दो, स्थावर आतप सूक्ष्म साधारण और अपर्याप्त, ये पहले गुणस्थान की उदय विच्छित्ति है ना, ये सारे सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त भी नाम आने वाले हैं, यही तक बंद है यही तक उदय है, और जिसने पहले बांध के रखा है सारे खोटे परिणाम से तो उसकी उसका किसी मिथ्या दृष्टि ने बांध के रखा है तो उसको उदय आना ही है ना, और सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो नहीं आएगा उदय, तो पहले कोई खोटे कर्म बांधे है तो उसके कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, नहीं समझे सम्यक दर्शन हो जाएगा ना तो एक इंद्रिय जाति बांधी हो तो क्या होगा, उसका पंचेंद्रिय जाति रूप से खिर जाएगी, वो पंचेंद्रिय बना रहेगा, पंचेंद्रियों के भोग करता रहेगा, हमने देखे थे ना लगातार पंचेंद्रिय का भोग कितने टाइम तक मिलता है, 185 सागर वो नरक सहित गिने थे ना उन्हें, हाँ देखो देखो, यानी कोई कर्म बांधे हम तो कर्मों से डरते रहते ना, कैसे होगा क्या होगा, परिणामों से नहीं डरते अपने, किससे डरते, कर्मों से, क्योंकि परिणाम तो बिल्कुल खुश होकर कर रहे हैं, केवल उसका फल नहीं चाहते, बुरा फल नहीं चाहते। यहाँ क्या कहते देखो, मिथ्यात्व तो प्रकृति का बंद, अरे हम डिराइव कर रहे थे ना 42 पेज पर, अभी हुंड संस्थान, अभी अभी मेरा प्रश्न है ब्रह्मा से, हुंड संस्थान बंद तो यहाँ रुका, उदय कहाँ तक है, तेरहवें तक हमने देखा 6 संस्थानों का उदय हो सकता है, केवल ही भगवान के भी 13वें गुणस्थान तक 6 संस्थान में से कोई संस्थान हो सकता है, तो उदय विच्छित्ति 13वें में है। हाँ देखो, असंप्राप्त सुपाटी का सहनन, अभी मनीषा बेन आपको बताना है, हाँ पहले गुणस्थान तक बनती है, उदय कहाँ तक है, नहीं 7वें तक, सहनन 7वें तक, निद्रा 6ठे तक, क्योंकि हमने देखा था ना ये सहननहीन सहनन वाला इस काल में पंचम काल में मुनिराज होकर 7वें 6ठा 7वां का पुरुषार्थ करते हैं कि नहीं करते, श्रेणी नहीं चढ़ सकते, इसलिए वहीं पर उसकी उदय विच्छित्ति है। संस्थान सारे 13वें तक, और सहनन का नियम है हमने देखा ना, उपशम श्रेणी तो ऊपर के तीनों सहनन वाले चढ़ सकते हैं, शपक श्रेणी तो वो वज्रभूषण नाराज वाला ही चढ़ेगा, इसलिए उसकी उदय की उच्चति ऊपर बताई, नरक गत्यानुपूर्वी नरक गति के साथ उसको लेना 4थे, आतप पहले आतप है, स्थावर है, सूक्ष्म है, अपर्याप्त है, साधारण, उदय और बंध पहले में ही है, अभी हम यहां से पढ़ेंगे नीचे का पैराग्राफ है ना उसमें 4थी लाइन, एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय जाति आतप स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण शरीर, वो शरीर हुआ शरीर, इन प्रकृतियों का बंध और उदय विच्छेद मिथ्यात्व प्रकृति के ही समान है, पहले गुणस्थान में है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में होने वाले बंध उदय विच्छेद के प्रति इनका मिथ्यात्व के साथ कोई भेद नहीं है, यानी मिथ्यात्व के समान है। किसके बारे में? बंदर उदय के बारे में। नपुसक वेद का पूर्व में बंदे विच्छेद यहाँ यही पर मिथ्यात्व गुण स्थान में, और पश्चात उदय का विच्छेद होता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में बंद के नष्ट हो जाने पर पीछे अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में उदय का विच्छेद होता है। यानी कोई नपुसक वेदी है वो सम्यक तो प्राप्त करके श्रेणी चढ़ के वो मोक्ष भी जा सकता है। उदय कहाँ तक है नपुसक वेद का? नवे तक है, बाद में वो अपगत वेदी हो जाता है। जाता ना, वो जन्म से नपुसक वेदी है, बाद में पुरुषार्थ किया उसने, मुनिराज हुए, अभी वो वेद का कोई ऐसा फल उसका परिणाम नहीं हो रहा है, परंतु उसका वेद का उदय कर्म कहाँ तक है? उसका उदय नवे तक है। कोई भी होगा ना, श्रीवेदी हो या पुरुष वेदी हो या नपुसक वेदी हो, वेद का उदय नवे के पहले भाग तक है। यानी वो तीनों ही जीव मोक्ष जा सकते, पर द्रव्य से पुरुष होने चाहिए। द्रव्य से जो स्त्री है उसके पांचवे तक का ही पुरुषार्थ हो सकता है, ऊपर का नहीं। ये नपुसक वेद की बात हो गई। इसी प्रकार नरकायु और नरक गति प्राज्ञानु पूर्वी नाम कर्म का बंध उदय विच्छेद कहना चाहिए, क्योंकि मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में बंध के नष्ट हो जाने पर ये गति क्यों छोड़ी? ऊपर गति को भी लिया क्या? क्या अलग से लिया? निरयायु निरय गई वाओगाणु पूवी माणानम निरगत नरगति को भी लेना या? नहीं नहीं, उन्होंने केवल प्राज्ञानु पूर्वी लिखा और नरक गति के बाद, हाँ, क्योंकि तीनों को चौथे गुण स्थान तक उदय है ना। हाँ, नरगति भी लिखा है ना। देखो नरकायु, उसके बाद नरक गति और नरक गति प्राज्ञान पूर्वी डालना, उसमें नरकायु के बाद डालना नरकायु कौमा नरक गति और नरक गति प्राज्ञान पूर्वी नरक गति शब्द डालो। हाँ, प्राकृत में है वैसे, निरयाउ निरय गई वाउ गाण पूर्वी, शायद उन्होंने दोनों के लिए। हाँ, एक्चुअली यहाँ लिखते समय निरयायु निरय गई अलग लिखा था, निरगई पायगण पूर्वी अलग लिखा था मूल सूत्र में। अलग ही होना चाहिए था, क्योंकि आगे सोदय में भी अलग से ही लिखा है, यहाँ निरय गई अलग से लिखना चाहिए था, निरयाहु निरय गई और निरय गई पाउगान पूर्वी। 44 पेज पर जो पहला शब्द है ना वाउगान पूर्वी, वो पा चाहिए, वा नहीं, और उसके पहले निरय गई पाउगान पूर्वी लिखना है। निरय गई, हाँ, यानी पूरा शब्द हो जाएगा निरय गई पाउगान पूर्वी नामानम वत्तव्यम। पढ़ेंगे अभी नीचे से तीसरी लाइन। इसी प्रकार नरकायु नरक गति और नरक गति प्राज्ञान पूर्वी नाम कर्म का बंधोदय विच्छेद कहना चाहिए, क्योंकि मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में बंध के नष्ट हो जाने पर पीछे असंयत समय दृष्टि गुण स्थान में इनके उदय का विच्छेद होता है। यानी वो नारकी भी चौथा गुण स्थान प्राप्त करते हैं, वहां उसका उदय है उनके। इसी प्रकार हुंड संस्थान और असंप्राप्त सुपाटिका सहनन का भी कहना चाहिए, क्योंकि मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में बंध के नष्ट हो जाने पर पीछे यथाक्रम से, जिस क्रम से दो नाम बताए यथाक्रम से, हुंड संस्थान के लिए संयोग केवली और असंप्राप सुपाटी का सहने के लिए अप्रमत्त संयत गुण स्थान में इनके उदय का विच्छेद होता है। अब स्वोदय परोदय की बात चलेगी। मिथ्यात्व का स्वोदय से ही बंद होता है। नारकायु नरगति और नरगति प्रायज्ञान पूर्वी नाम कर्म परोदय से ही बनते, क्योंकि नारकी जीवों को ये नरकायु नरगति नहीं बनती। मान सकते हैं क्या हम? अनिशा बहन क्यों इतना सोच रही है? क्या नारकी जीव नरगति का बंद करते हैं? नहीं करते। किनके बंदे की? तिरिंच और मनुष्यों के बंदे की। वो क्या है? उनके लिए परोदय है। तो कहते परोदय से ही बनते हैं, क्योंकि स्वोदय से इनके अपने बंध का विरोध है। वैसे हमने देखा था देवगति भी, देवगति के उदय में उसका बंध नहीं होता है। नपुसक वेद, अब देखो ये जो बाकी प्रकृतियां है वो स्वोदय में भी बंधेगी, परोदय में भी बंधेगी। नपुसक वेद का बंध नपुसक वेदी को भी होगा, स्त्री वेदी पुरुष वेदी को भी हो सकता है, इसलिए स्वोदय में भी बंधेगी, परोदय में भी बंधेगी। यहाँ क्या कहते हैं? नपुसक वेद एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीनिंद्रिय चतुरिंद्रिय जाति, तो ये जाति किसको बंधेगी? एकेंद्रियों को भी बन सकती है, पंचेंद्रियों को भी बन सकती है, तो स्वोदय में भी बंधेगी, परोदय में भी बंधेगी। कुंड संस्थान, कौन से संस्थान वाले कौन से संस्थान को बांध सकते हैं? किसी भी संस्थान में हो किसी संस्थान को बांध सकते हैं। ऐसे ही सहनन में भी आतप, आतप के उदय वाले को भी आतप बन सकती है, जिसका आतप का उदय नहीं है ऐसे जीवों को भी वो बन सकती है। स्थावर, स्थावर को भी बन सकती है, त्रस को भी बन सकती है। सूक्ष्म, सूक्ष्म जीव भी सूक्ष्म का बंद कर सकते हैं, बादर जीव भी सूक्ष्म का बंद कर सकते हैं। अपर्याप्त, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों उसका बंद कर सकते हैं, यानी उसके उदय में। साधारण शरीर ने निगोद संबंधी, तो वो जीवों को भी साधारण का बंद, उसके उदय में भी वो बनती है और प्रत्येक शरीर वालों को भी बनती है, यानी स्वोदय में भी बनती है, परोदय में भी, ये उसका अर्थ है। ये स्वोदय परोदय से बनते हैं क्योंकि दोनों प्रकार से भी इनका बंद होने में कोई विरोध नहीं है। ये जो लिख रहे उसका अर्थ हमें भाषित होता है कि नहीं, ये देखना। अब क्या वो निरंतर बनती है कि नहीं बनती? मिथ्यात्व और नारकायु प्रकृतियां निरंतर बनने वाली है। देखो मिथ्यात्व तो ध्रुवबंदी है, नारकायु ऐसे ध्रुवबंदी नहीं है, पर एक बार बंधना शुरू हो जाएगी तो अंतर्मूर्त में नियम से बंधेगी बंधेगी अंतर्मूर्त तक, इसलिए उसको निरंतर बंदी कहते हैं। निरंतर बंदी में कंडीशन क्या है? वो मिनिमम अंतर्मूर्त तक तो बनती रहती है, क्योंकि ध्रुवबंदी होने से, वो मिथ्यात्व प्रकृति ध्रुवबंदी होने से, लिखना मिथ्यात्व प्रकृति शब्द डालो बीच में, क्योंकि दोनों ही ध्रुवबंदी नहीं है। हम लिखेंगे ना मिथ्यात्व प्रकृति ध्रुवबंदी होने से, ये निरंतर बंधने क्योंकि ध्रुवबंदी, ये तो हमने अपने समझने के लिए डालो, वहां तो उन्होंने डाला नहीं है। ध्रुवबंदी होने से काल क्षय से इनके बंध विनाश का अभाव है। क्या कहते हैं? अन्य प्रकृतियां कैसी होती है जो सांतर वगैरह होती? वो सातावेदनी की बात की हमने, सातावेदनी अंतर्मूर तक बंधे, पर उसकी लिमिट है, अंतर्मूर से ज्यादा नहीं बंधेगी, उसका काल का विनाश हुआ, असाता बंधने लगेगी। स्थिर अस्थिर जो कोई प्रतिपक्षी प्रकृति है, काल अक्षय होता है, उसकी जो बंधने की मर्यादा है वो पूरी हुई तो वो प्रतिपक्षी बंधेगी। क्या नरकायु के बारे में ऐसा है? उसका अपना बंधन का काल पूरा हुआ, वो प्रतिपक्ष की कोई अपेक्षा नहीं, वो अपना काल अंतर्मूर तो बंधेगी, ऐसा भी नहीं कि एक समय में बंध के रुकेगी, ऐसा भी नहीं होता है। प्रतिपक्ष में ये पॉसिबल है, असाता से साता बंधने लगी और एक समय में वो फिर दोबारा असाता में चला गया बंधने में, होता रहता है। अब यहाँ क्या बात हो रही है अपनी? ये आयु की बात चल रही है। आयु बनती है कोई तो अंतर्मूर्त तो बनती रहती है, और उसके लिए कोई प्रतिपक्ष नहीं होता, वहां पर वो बंदी अंतर्मूर्त तक रुक गई। परंतु ये प्रतिपक्षी कैसी होती है? एक समय में भी रुक सकती है, तो ध्रुवबंदी होने से काल क्षय से इनके बंध विनाश का अभाव है। पर उसको नरकायु को ध्रुवबंदी नहीं कहते, उसको निरंतर बंदी कहते हैं, इसलिए उन दोनों को निरंतर बंधने वाली कहता। शेष प्रकृतियां शांतर बनती है क्योंकि उनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंध की संभावना है। ये निरंतर है और ये शांतर है। शांतर में प्रतिपक्ष की अपेक्षा आती है। अब कौन से प्रत्ययों से बनती है वो बात बताएंगे। अब मिथ्यात्व एक ही गुणस्थान है तो वहां के प्रत्यय बताना है, चार मूल प्रत्यय, क्योंकि सारी मिथ्यात्व में बनती है ना, तो चार मूल प्रत्यय है। और उत्तर प्रत्यय कितने हैं? 55, 57 में से 55। और फिर एक जीव की अपेक्षा मिनिमम 10, मैक्सिमम 18। अब यही पढ़ेंगे यहाँ पर, चार मूल प्रत्ययों से 55 नाना समय संबंधी उत्तर प्रत्ययों से, यानी एक जीव को अलग अलग समयों में ये प्रत्यय हो सकते हैं, तथा 10 से लेकर 18 तक एक समय संबंधी जघन्य एवं उत्कृष्ट प्रत्ययों से मिथ्या दृष्टि, यानी वो गुणस्थान बताए, इन प्रकृतियों को बांधता है। विशेष इतना है कि अभी नरकायु को जब बांध रहा है उसके प्रत्यय जुदे हो गए, क्योंकि आयु विशिष्ट बांध रहा है, तो उस कौन से जीव को नहीं बंधेगी? तो देव नारकी को नहीं बंधेगी। इसलिए कहते हैं वैक्रेक मिश्र, यानी वैक्रेक का योग वाले को, वैक्रेक मिश्र का योग, औदारिक मिश्र का योग और कारमान का योग प्रत्ययों के बिना 51 प्रत्ययों से नरकायु को बांधता है। इसका अर्थ समझ में? औदारिक मिश्र वाले को नरकायु नहीं बांध सकती, बन सकती, हाँ ऐसा कहना चाहिए। इसी प्रकार नरक गति और नरक गति प्राज्ञान पूर्व के भी, यहाँ भी ब्रैकेट में दिया है ना, निरय गई प्राज्ञान पूर्व, यानी अभी हमने जैसा डाला ना वैसे उन्होंने भी ब्रैकेट करके डाल दिया है। उनको यही कहना, वो नरक गति उन्होंने कॉमन रखा है, नरक गति और उसकी प्राज्ञान पूर्व, इस अर्थ में उन्होंने उसको नहीं लिखा, परंतु समझने के लिए उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया ऊपर। इसी प्रकार नरक गति और नरक गति प्राज्ञान पूर्वी के भी 51 प्रत्यय है, क्योंकि वो भी इन जीवों को नहीं बनती है। कौन से वाले? वैक्रेक मिश्र, औदारिक मिश्र, कारमान वालों को। द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, अब ये कौन से किसको नहीं बंधेगी? देवनारकी इसको नहीं बांधेंगे, तो उनके लिए भी यही बात करेंगे। तो द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त प्रकृतियों के वैक्रियक द्विक के बिना 53 प्रत्यय है। परंतु ये जो प्रकृतियां है ना, वो औदारिक मिश्र वाले को और कारमान का योग वालों के बन सकती है, इसलिए उसको तो रखा, परंतु देवनारकी को नहीं बंधेगी, इसलिए केवल वैक्रिक कायोग और वैक्रिक मिश्र कायोग को छोड़ दिया। तो उसके बिना बाकी 53 प्रत्यय, यानी मिथ्या दृष्टि के 55 में से उसको 2 कम कर दिए। अब कौन से गति वाले हैं? मिथ्यात्व को 4 गतियों से संयुक्त, यानी किस गति के साथ वाले बांध रहे, उसकी बात है, स्वामी की बात नहीं। अभी मिथ्यात्व बनता है, क्या देवगति के साथ बन सकता है मिथ्यात्व? बन सकता है ना, चारों गति के साथ बन सकता है। नपुसक वेद के देवगति के बिना 3 गतियों से संयुक्त, जब नपुसक वेद बांध रहा है देवगति नहीं, क्योंकि देवगति में 2 ही होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, तो जब देवगति बांध रहा है उस समय स्त्री वेद या पुरुष वेद बांधेगा, वो क्या बांधेगा उसकी चर्चा नहीं। नपुसक वेद कौन से गति सहित बांधेगी? नरक गति सहित बंधेगी, मनुष्य गति सहित बंधेगी, तिर्यंच गति सहित बंधेगी, इसलिए 3 गतियों से संयुक्त। नरकायु, नरक गति और नरक गति प्राज्ञान पूर्वी नाम कर्म को नरक गति के संयुक्त, ये तो आसान है ना समझना। 7 कुंड संस्थान को देवगति को छोड़कर 3 गतियों से संयुक्त, क्योंकि देवगति के साथ समचतुरस्य संस्थान ही बनता है, नारकी के साथ हुंड संस्थान ही बनता है, और बाकी तो मनुष्य तीर्यंचों के साथ तो इसका बंद हो ही जाएगा। और ऐसे भी चतुर इंद्र तक खुंड संस्थान होता है ना, हमें तो किस गति के साथ बनते बस इतना बताना था। असंप्राप्त सुपाटिका सहनन और अपर्याप्त नाम कर्म को तिर्य गति व मनुष्य गति से संयुक्त। हाँ, फिर से पढ़ते हैं, कहाँ गए अपना, कौन से गति सहित बांध रहे थे ना, ये चर्चा चल रही थी। कुंड संस्थान तो देव को छोड़कर तीन गति सहित। अभी सहनन किस में होता है, औदारिक शरीर में ही सहनन होता है, तो मनुष्य गति सहित और देव मन तिर्यंच गति सहित बंधेगी। और अपर्याप्त नाम कर्म भी, अपर्याप्त का उदय मनुष्य तिर्यंचों में ही होता है, तो तिर्य गति और मनुष्य गति से संयुक्त। तथा शेष प्रकृतियों को तिर्य गति से संयुक्त बांधते हैं। अभी आपको बताना है शेष प्रकृतियां कौन सी है जो मात्र तिर्यंचों में होती है। हाँ, पेज नंबर 45 चल रहा है। कौन कौन सी रह गई? अरे एक इंद्रिय को क्यों छोड़ा हमने, एक इंद्रिय द्विंद्रिय तिंद्रिय चतुरिंद्रिय सभी देखे थे। हाँ, स्थावर भी, आतप भी, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त भी, ये सारे क्या अपर्याप्त मनुष्य गति के साथ भी हुआ था, पर सूक्ष्म और साधारण तो तिर्यंच गति के साथ ही होता है। अब आगे बढ़ेंगे तो शेष प्रकृतियों में समझ में है ना किस किस के, यानी चार जाति, आतप स्थावर सूक्ष्म साधारण, अपर्याप्त को हमने तिर्यंच मनुष्य दोनों के साथ लिया था। अब सूक्ष्म स्थावर, सॉरी चार जाति लिखा, आतप स्थावर सूक्ष्म और साधारण। कौन सी लास्ट लाइन? हाँ, ऊपर जो लाइन है वो अपर्याप्त को छोड़कर की बात है, पर वहां एक इंद्रिय को छोड़ा था ना। एक इंद्रिय को इसलिए छोड़ा था कि एक इंद्रिय वो वैकृत मिश्र के साथ एक इंद्रिय बन सकती है, इसलिए वहां उसका नाम नहीं लिया था। हाँ, अब देखो 45 पेज है, नीचे का पैराग्राफ। मिथ्यात्व, अब बांधने वाले कौन जीव है वो पूछ रहे हैं। मिथ्यात्व, नपुसक वेद, कुंड संस्थान और असंप्राप्त सुपाटिका सहनन प्रकृतियों के चारों गतियों के मिथ्या दृष्टि स्वामी है, यानी इनको तो चारों गति वाले बांध सकते हैं। एकेंद्रिय, आतप और स्थावर नाम कर्म के बंध के नरक गति को छोड़ शेष तीन गतियों के मिथ्या दृष्टि स्वामी है, क्योंकि देव भी इनको बांध सकते हैं। शेष प्रकृतियों के तिर्य गति व मनुष्य गति के मिथ्या दृष्टि स्वामी है। देखो हमने याद जो किए थे ना बंध विच्छित्ति, कैसे मिथ्यात्व, कुंडक संस्थान, नपुसक वेद, असंप्राप्त सुपाटिका सहनन, ये जो पहले चार है, उसके बाद एक इंद्रिय स्थावर आतप को ही लिया था, यानी ये जो चार है वो तो नारकियों के ही बंधेगी, उनकी बंध विच्छित्ति कहेंगे, यानी नारकी भी बांधते, बाकी तो सब बांधते ही है। अब ये सात है ना उसके आगे के, यानी ये पहले चार और एक इंद्रिय स्थावर आतप, ये सात जो प्रकृतियां देव बांधते हैं वो आगे की नहीं बांधेंगे, हमने इसी ऑर्डर से याद किया था। इसलिए जब मार्गणाओं में बंध विच्छित्ति कहेंगे, नारकी को पहले गुणस्थान में कितने की बंध विच्छित्ति होगी, हमने 16 गिनी है ना, पहले गुणस्थान में 16 की बंध विच्छित्ति होती है, नारकी जीवों को कितने की बंधी हुई चित्त होगी? चार की, वो आगे की बांधते ही नहीं है, जो बांधते है उसमें से बंध विच्छित्ति कहेंगे। अभी क्या हो रहा है, स्वामी बताए ना, मिथ्या तो नपुसक वेद हुंड संसार नपाटिका सहनन प्रकृतियों के चारों गतियों के मिथ्या दृष्टि स्वामी है। यहाँ तो चारों गति को लिया, यानी नारकी भी इनको बांध रहा है, पर आगे की जो तीन कौन सी है, एक इंद्रिय स्थावर आतक, इनको नारकी को छोड़कर तीन गतियों के स्वामी बताए, यानी मनुष्य तीर्यंच और देव, इनको बांध रहे। उसके आगे की प्रकृतियां है मात्र तीरेंच मनुष्य ही बांधते हैं, कौन से, वो एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय वगैरह सब जो बातें हैं, नहीं एक इंद्रिय नहीं छोड़कर द्विंद्रिय तीन्द्रिय से लेकर, एक इंद्रिय को तो देवों में ले लिया, हाँ वो सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त वो सब, ख्याल में आई बात। ये 16 के हमने इसीलिए इस तरह से याद किया था, उसके पीछे भी रहस्य होता है, इसी ऑर्डर से याद किया था, वो मार्गणाओं में जाकर उसका काम आता है। अब स्वामी बताए ना, पहली चार प्रकृतियां चारों गति के हैं, पहले से लेकर सात प्रकृतियां जो है वो तीन गति, पहले से नहीं आगे की तीन प्रकृतियां, एक केंद्रीय सावर आतक, तीन गतियों के जो बांधते, और आगे जो है द्विंद्रियादि है सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त है, वो तो तीरेंच और मनुष्य बांधते उसको मिथ्या दृष्टि। फिर पढ़ते यहाँ देखो नीचे का पैराग्राफ, मिथ्यात्व नपुसक वेद हुंड संस्थान और असंप्राप्त रूपाटिका शरीर सहनन प्रकृतियों के चारों गतियों के मिथ्या दृष्टि स्वामी है। एकेंद्रिय आतप और स्थावर नाम कर्म के बंध के नरक गति को छोड़ शेष तीन गतियों के मिथ्या दृष्टि स्वामी है, यानी देव भी इन प्रकृतियों को बांधते हैं, वो भी देव भी मरकर जाएंगे एकेंद्रिय आदि में। शेष प्रकृतियों के तीर्य गति व मनुष्य गति के मिथ्या दृष्टि स्वामी है। इसका अर्थ समझ में आया, यानी मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तीर्यंच वो पहले से लेकर 16 के 16 सभी प्रकृतियों के वो बंध के स्वामी है, समझ में आया ना बात। बंध अध्वान ये तो मिथ्या दृष्टि ही लेना है, कहां से कहां तक तो बस मिथ्या तो में होता है, और बंध विच्छेद स्थान सुगम है, सबका बंध विच्छेद कहाँ है, मिथ्यात्व के अंतिम समय में। मिथ्यात्व का बंध, अभी मिथ्यात्व ये प्रकृति है, उसका बंध अनादि है कि सादि है, पहले ये नक्की करो। अनादि तो है ही है ही, अब सादि कब कहलाएगा, ऊपर के गुण स्थानों में जाके नीचे आएगा तो मिथ्या तो फिर बंधना शुरू होगा, उसलिए ये सादि कहेगा। ध्रुव किसके लिए और अध्रुव किसके लिए, अभव्य के लिए ध्रुव और जो बाकी वो भव्यों के लिए अध्रुव, क्योंकि वो तो ऊपर के गुणस्थान में जाएगा बंध विच्छित करके। तो यहाँ कहते मिथ्यात्व का बंध सादि अनादि ध्रुव और अध्रुव भेद से चार प्रकार का है, शेष प्रकृतियों का बंध सादि और अध्रुव होता है। ऐसा क्यों कहा, बाकी सारी प्रकृति उसमें ध्रुव बंधी कोई नहीं है, बाकी वो निरंतर बंधी भी छोड़ दो, भले वो निरंतर है परंतु वो तो उसका आदि है, तो सादी और अध्रुव ही होती है। 40 पृष्ठ पर आते हैं अभी, 46 पर। अभी तक हमने ज्ञानावरण के सब देखे भेद, दर्शनावरण के सभी भेद देखे, वेदनी के साता भी देखा, असाता के साथ छठा गुणस्थान भी देखा, मोहनीय में हमने मिथ्यात्व के सहित वाला सब देखा, तो मिथ्यात्व के मिथ्यात्व चला गया, मिथ्यात्व का हमने देख लिया। अभी कंटिन्यूस मोहनी के प्रकृति याद करो, मिथ्यात्व देखा हमने, अनंतानुबंधी वो त्याग वृद्धि के साथ देखा था, अब उसके बाद नंबर है अप्रत्याख्यानावरण का, इसलिए अभी इसकी बंध विच्छित्ति देखी, उसके साथ विच्छित्ति होने वाले अन्य प्रकृतियां। तो अप्रत्याख्यानावरण कौन से गुणस्थान में बंध विच्छित्ति होती है, चौथे, तो उदय की बात नहीं, अभी बंध विच्छित्ति सोचो। तो यहाँ चौथे में और कौन कौन सी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति, चौथे की बंध विच्छित्ति बताने आपको, बोलो बताएंगे। अप्रत्याख्यानावरण चार, हाँ, इस तरह से कितनी हुई, 10 होती है, यानी एक तो चार तो कषाय बताने हैं और बाकी मनुष्य संबंधी सब प्रकृतियां बतानी है। और एक ही सहन लेना है क्योंकि वो तो बाकी बंदे विच्छित्ति पहले हुई थी। अब यहाँ पढ़ेंगे हम। देखो हमको तो ये ऐसा क्यों होता है उसके बात सोचनी है, प्राकृत में पढ़ेंगे। अपच्चखाना वरणीय कोद मान माया लोभ मनुष्य गई ओरालिय शरीर अंगोवंग वज्रिस वही वैर नारायण संगणन यानी वज्रषभ नाराज मनुष्य गई पाउगाणो पूवी नामानम को बंधो को अबंधो। मनुष्य ही क्यों नहीं लाया? मनुष्य गई पाउगाण पूर्वी, एक मिनट, मनुष्य का अलग सूत्र बताया है क्या? होता है परंतु उसको नहीं लिया तो आगे लिया है क्या नहीं, बस इतना देखना है अपने को। मनुष्यायु का लिया है पेज नंबर 61 पर। अकेले लिया। हाँ देखो, इसलिए कि ये जो आयु तीसरे गुणस्थान में नहीं बनती है उसके लिए ये बात बताएंगे। देखो हम कंटिन्यूस नहीं सकते, ये एक से चार तक बनते ऐसा हम कह नहीं सकते। उसके लिए तीसरे गुणस्थान में बनती नहीं ना, इसलिए उसकी बात अलग करेंगे। यहाँ तो हम मोहिनी की बात करें, मोहिनी की मुख्यता से बात यहाँ बताएंगे। मैंने मनुष्यायु को 29 नंबर के सूत्र में बताया, पेज नंबर 61 पर। नहीं तो यहाँ कोई प्रश्न उठता है ना, मनुष्यायु क्यों नहीं गया? मैंने मनुष्यायु को 29वें सूत्र में ली बताया, पेज कौन सा बताया था मैंने, 60 ना, हाँ 61। रीजन कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये हमें सोचना है क्यों। हाँ, हमारे लिए ऐसा है कि बाकी प्रकृतियों का बंध अधवान कहते समय हम कहेंगे पहले से चौथे तक बनते हैं, वैसे यहाँ मैं नहीं कह सकते आयु के बारे में, वहाँ कोई आयु नहीं बनती। मनुष्य आयु नहीं लिया, मनुष्य गति लिया है, मनुष्य गति ले ली, मनुष्य आयु नहीं ली है, क्योंकि मनुष्य गति भी ली और अनुपूर्वी भी ली है। देखो पहली लाइन में क्या है, अप्रत्याखानावरण क्रोध मान माया लोभ मनुष्य गति औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग वज्रषभ नाराज वज्र नाराज सहनन और मनुष्य गति प्राज्ञान पूर्वी नाम कर्म का कौन बंधक कौन अबंधक है। क्योंकि यहाँ कहते समय क्या लिखा, मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत तक ये बात आयु में घटित नहीं होती, इसलिए आयु को छोड़ा है। ख्याल में आई क्यों छोड़ा है? ये जो नेक्स्ट सूत्र जो है वो क्या बताता है, ये सभी प्रकृतियां पहले से चौथे तक बनती है। ये कथन मनुष्यायु के लिए घटित नहीं होगा क्योंकि तीसरे में कोई आयु बनती नहीं है, इसलिए उसका सूत्र अलग बनाया। ये बंध विचित्त के अनुसार सूत्र नहीं बना रहे, ये तो हमने आपको बताया कि एक एक प्रकृति है। अभी मोहिनी की मुख्यता से बात हो रही है और प्रत्येक अनावरण के साथ जो अन्य बातें वो यहाँ ले लिए। पहले बनती है, तीसरे में भी बनती है ना, गति तो हर समय बन रही है कोई ना कोई गति, बंद के बिना भले कौन सी गति बन रही है उसमें डिफरेंस होगा, पर पहले गुणस्थान से आठवें तक गति तो बनती रहती है, हर समय गति बन रही है। आयु की बात ऐसी नहीं है, लेना ही है ना। और ऐसे भी उसकी बंद विच्छेदी सिंगल ही है, उसको अलग लेना ही था। अब देखो हिंदी हमने पढ़ा ना, अप्रत्याख्यान आवरण क्रोध मान माया लोभ मनुष्य गति औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग वज्रश वज्र नाराज सहनन और मनुष्य गति प्राज्ञान पूर्वी नाम कर्म का कौन बंधक और कौन अबंधक है, यह सूत्र सुगम है, उसका उत्तर बताएंगे। यानी ये सारे 23 प्रश्न यहाँ समझने चाहिए, कौन अबंधक कौन बंधक, फिर उसके उत्तर अभी देखें। कहते मिच्छा इट्ठी पहुड़ी जाव असंजत सम्मा इट्ठी बंधा एदे बंधा अवशेषा अबंधा। मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत समय दृष्टि तक बंधक है, ये बंधक है, शेष जीव अबंधक है। यह देशामर्शक सूत्र है, यानी पार्शल बताया है, अध्वान बताया है उसका, क्योंकि वह केवल बंध स्वामित्व और बंधाध्वान का ही निरूपण करता है। यानी बांधने वालों का स्वामित्व बताया और उसकी मर्यादा भी बताई कहां से कहां तक। इसी कारण इस सूत्र से सूचित अर्थ की प्ररूपना कहते, इसमें जो गर्भित अर्थ है वो सारा बताएंगे, वह इस प्रकार है। अब पहला क्या था, बंध पहले विच्छिन्न होता है क्या उदय, तब उसके लिए देखते हैं। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क और मनुष्य गति प्राज्ञान पूर्वी नाम कर्म का बंध और उदय दोनों साथ में विच्छिन्न होते हैं। हमने देखा ये चौथे गुण स्थान का जो ये कषाय जो वहां पर है उसका बंध है, उदय भी वहां तक ही है। मनुष्य गत्यानुपूर्वी की ये विशेषता है क्योंकि विग्रह गति में उसका उदय होगा, पांचवें गुण स्थान छठे गुण स्थान उसमें उसका उदय होगा क्या, नहीं। तो चौथे गुण स्थान के साथ वो इसका उदय चल सकता है क्योंकि चौथे गुण स्थान वाला मरकर वो कारमाण का योग में आता है तब उसके प्राज्ञानुपूर्वी का उदय रहेगा। देव मरकर मनुष्य में आ रहा है सम्यक दृष्टि, तो उसको इसका उदय होगा कि नहीं होगा, चौथे तक की बात कर रहे थे। तो उनका बंध और उदय दोनों साथ में विच्छिन्न होता है क्योंकि एक असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में दोनों के विनाश पाए जाते हैं, दोनों के यानी बंध और उदय के। मनुष्य गति का पूर्व में बंध और पश्चात उदय विच्छिन्न होता है। मनीषा बेन आपको बताना है मनुष्य गति का उदय कहां तक चलेगा। देखो देखो ये सारे मुनि राज मनुष्य है कि नहीं है, और अरिहंत भगवान कौन है, मनुष्य। तो उनका मनुष्य गति का उदय कहां तक है, 14वें तक, ख्याल में आई ना बात। हाँ नहीं। किसी कर्म का उदय नहीं है, हाँ। सब कर्म यहीं पर छोड़ के जाने वाले हैं और हमको तो सब साथ में रखने हैं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, सारे तो देव में जाना चाहते हैं। यहाँ देखो मनुष्य गति का पूर्व में बंध, क्योंकि बंध तो कहाँ तक है, तो चौथे तक है, पश्चात उदय विच्छिन्न होता है। देखो ये चौथे वाले बंध वो भी नारकी और देवों के होता है, मनुष्य चौथे वाला मनुष्य गति को नहीं बांधेगा, वो तो दूसरे तक ही बांध सकता है, मनुष्य और तीर्यंच दूसरे गुणस्थान तक ही मनुष्य गति को बांध सकता है, बाद में वो देव गति को बांधेंगे, वो मार्गणा की विशेषता है। हाँ। तो यहाँ तो इन जनरल गुणस्थानों की बात चल रही है। तो उसका बंध पूर्व में चौथे में चौथे तक है और उदय पश्चात उदय विच्छिन्न होता है क्योंकि असंयत समय दृष्टि गुण स्थान में बंध के नष्ट हो जाने पर पीछे अयोग केवली के अंतिम समय में उदय का विच्छेद होता है। हमने देखा ना अंतिम समय तक उदय है। इसी प्रकार औदारिक शरीर अंगोपांग वज्र शभ वज्र नाराज सहनन का पूर्व में बंध और पश्चात उदय विच्छिन्न होता है। विशेष इतना है कि संयोगी के अंतिम समय में उदय का विच्छेद होता है। औदारिक शरीर अंगोपांग और वज्रषम नारा सहनन का उदय 13वें के अंतिम समय तक। तो 14वें वाले को औदारिक शरीर है कि नहीं है, है। तो उदय नहीं है का अर्थ क्या है, उसके उसका कार्य क्या है, औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय में ऐसा योग होता है कि औदारिक के शरीर के परमाणु लिए जाते हैं। वो शरीर का परमाणु ग्रहण करने का कार्य 13वें तक है, जो ग्रहण किए हैं ऑलरेडी। अभी 14वें में क्या चल रहा है? निकलना। शरीर के भी परमाणु की केवल निर्जरा चल रही है। हमारे क्या हो रहा है? हमारे जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। हम और आप औदारिक शरीर के अनंत परमाणु हर समय छोड़ रहे हैं, हर समय अनंत ग्रहण कर रहे हैं, और फिर भी लगता है जैसा ठीक ठाक कल है वैसा ही आज है ना। अयोगी केवली में क्या, अभी नया ग्रहण रुक गया है और मात्र उनका छूटना चल रहा है। अंतिम समय में सारे ही शरीर के परमाणु वो तो बिखर जाएंगे, छोड़ जाएंगे, और जीव बिल्कुल शुद्ध जीव स्वरूप में विराजमान सिद्धालय में चला जाएगा। यह हमें बिल्कुल स्पष्ट भाषित होना चाहिए इस तरह से। आगे आते हैं पेज नंबर 47। अभी स्वोदय परोदय की बात चलेगी। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क आदि सब का स्वोदय परोदय से बंद होता है, क्योंकि ऐसा होने में कोई विरोध नहीं है। विशेष यह है, अभी विशेषता बताए ना, डिफरेंस। सम्यक मिथ्या दृष्टि यानी तीसरा गुणस्थान, और असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान में मनुष्य गति द्विक यानी मनुष्य गति प्रायज्ञान पूर्वी, उसकी प्रायज्ञान पूर्वी औदारिक द्विक यानी औदारिक शरीर और अंगोपांग और वज्र शब्द सहनन का परोदय बंद होता है। हमने देखा था ना, देवनारकी उसको बंद करेंगे, मनुष्य दिव्यंज उसको बंद नहीं करेंगे, यानी मनुष्य उसका बंद नहीं कर रहे हैं। तो मनुष्य गति के उदय में ये नहीं बंद रही, किसको? तीसरे चौथे वाले को। पहले दो गुण स्थानों में मनुष्य गति किसको बांध रहे? चारों गति वाले बांध रहे, स्वोदय परोदय दोनों में बंद रही पहले दो गुण स्थानों में, तीसरे चौथे में परोदय से ही बंधेगी। वज्रषभ सहनन का वहां सहनन ही नहीं है, है? तो उसके अपने उदय में नहीं, बिना उदय के ही बंध रहे हैं। अब निरंतर सांतर की बात करेंगे। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क का बंध निरंतर है, क्योंकि वो ध्रुवबंदी है, क्योंकि वे चारों प्रकृतियां ध्रुवबंदी हैं। मनुष्य गति और मनुष्य गति प्रायज्ञान पूर्वी का बंध मिथ्या दृष्टि और सासाधन समय दृष्टि के सांतर निरंतर है। सांतर निरंतर क्यों कहा? आप सांतर ही कहते ना, क्योंकि पहले गुणस्थान वाला अभी मनुष्य और तिर्यंच चारों गति में से बंध रुक रुक कर करता है। देव और नार की कभी तिर्यंच गति और कभी मनुष्य गति बांध रहे, फिर भी निरंतर भी दोष हो वहां हो सकता है कि नहीं हो सकता? पहले दो गुण स्थानों में किसका होगा हम निरंतर, ये बताने। आनतादि देवों में देखो, शुक्ल लेशा वाले जो देव है वो मिथ्या दृष्टि सासाधन वाले भी हो कौन सी गति बांधते हैं? मनुष्य गति ही बांधते, क्योंकि तिर्यंच गति का बंध कहाँ तक होता है? सहस्रार तक होता है। ऊपर के देव मिथ्या दृष्टि भले हो ग्रहवेग तक के, वो मनुष्य गति का ही हर समय बंद कर रहे हैं। तो वहां मिथ्या तो गुणस्थान होते हुए भी मनुष्य गति निरंतर बंद रही है, इसलिए सांतर भी है निरंतर भी है। निरंतर किस अपेक्षा? आनतादि देवों की अपेक्षा, और बाकी जीवों के लिए सांतर है। यहाँ लिखा है ना, सांतर निरंतर दोनों है, क्योंकि आनतादि वो तापी हुए, आनतापी नहीं, आनतादि देवों में अनंत आदि यानी ऊपर के, अभी पहले दो गुण स्थान है ग्रहवेग तक लेना है, निरंतर बंध को प्राप्त कर अन्यत्र सांतर बंध पाया जाता है। अन्यत्र सांतर यानी जो मनुष्यों में है, पहले दूसरे गुण स्थान की बात चल रही है। अन्यत्र का अर्थ पहले दो ही गुण स्थानों की बात है, तो पहले दो, ये पहली सेकंड लाइन में क्या लिखा है? मनुष्य गति और मनुष्य गति प्रायज्ञान पूर्वी का बंध मिथ्या दृष्टि और सासाधन समय दृष्टि, तो वो आनंद आदि को छोड़ दो। नीचे के देव सारे नारकी सभी तिर्यंच और मनुष्य पहले दो गुण स्थान वाले वे मनुष्य गति को सांतर बांध रहे, आनंद आदि मिथ्या दृष्टि और सासाधन वाले निरंतर बांध रहे। अब आगे कहते हैं सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थानों में निरंतर बंध है, वो निरंतर बंधवी किसको है? देव नारकियों को, क्योंकि देवों व नारकियों के इन विवक्षित दो गुणस्थानों में अन्य गति व अनुपूर्वी के बंध का अभाव है। वो मात्र मनुष्य गति और गत्यानुपूर्वी का ही बंध कर रहे हैं। इसी प्रकार और वहां तीसरे चौथे वाले औदारिक शरीर अंगोपांग और वज्रषभ नाराज यही सहनन भी बांध रहे, क्योंकि अन्य सहननों का तो बंध विच्छेद नीचे के गुणस्थानों में हो गया, पहले दूसरे में है? तो के देव और नारकियों के इन विवक्षित दो गुणस्थानों में अन्य गति व अनुपूर्वी के बंध का अभाव है। इसी हाँ, मनुष्य गति के साथ औदारिक शरीर अंगोपांग वज्रषभ नाराज सहनन ही बांधेंगे। इसी प्रकार औदारिक शरीर अंगोपांग और वज्रषभ सहनन के भी कहना चाहिए। इसका कारण यह है कि औदारिक शरीर का सर्वदेव नारकी तथा तेजस कायिक व वायु कायिक जीवों में निरंतर बंध पाया जाता है। औदारिक शरीर अकेला लिया, अंगोपांग को इसलिए छोड़ा है, अंगोपांग त्रस के साथ बंधेगा। जब एक इंद्र का बंध है तो अंगोपांग नहीं बंधेगा, पर औदारिक शरीर तो हर समय बंधेगा। अन्यत्र यही बंध सांतर देखा जाता है। तेजस का एक वायु का एक कोल क्यों लिया? एक मिनट, अपन वो तीरंज का बंद कर रहे हैं ना, वो एक इंद्रिय क्यों नहीं लिखे? फिर एक इंद्रिय जो तो औदारिक शरीर का ही बंद करते, तेजस का एक की बात अलग से क्यों ली? औदारिक शरीर अंगोपांग का सब नारकियों में और सानत कुमार एवं महेंद्र कल्प के देवों में भी, यानी उसके ऊपर भी निरंतर बंध पाकर, क्योंकि नीचे में क्या है, एक इंद्रिय का बंध करेंगे तो अंगोपांग नहीं बांधेंगे। ईशान आदि अधस्तन यानी ईशान, सौधर्म, फिर भवनवासी, नीचे लेना, देवों के मिथ्या दृष्टि व सासाधन गुणस्थानों में तथा तिर्यंच और मनुष्यों में सांतर बंध पाया जाता है। इसका अर्थ समझ में आता है? अंगोपांग का सांतर बंध क्यों कह रहे हैं? एक इंद्रिय का बंध कर सकते इसलिए। वज्रषभ सहनन का देव और नारकी सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थानों में निरंतर बंध पाकर, क्योंकि वो एक ही सहनन बांध रहे, बाकी बंध विच्छित्ति हुई थी। अन्यत्र ने मिथ्या दृष्टि और सासाधन में सांतर बंध पाया जाता है। ये समझ में है बात? ये ज्यादा फिर देखते, देखो आपको इतना डिफिकल्ट, हमारे शोभा बहन को कितना डिफिकल्ट होता है। हाँ नहीं नहीं याद रह जाएगा, क्योंकि अभी हमने मार्गणा में नहीं देखा है ना, मार्गणाओं की बात अभी हमारा विषय हुआ था कर्मकांड में, कौन सी मार्गणा वाले कौन से प्रकृति बांधते हैं, कौन सा बंध विच्छेद होता है, यहाँ अपना विषय हुआ था। अभी उसको बहुत दिन हो गए ना, दोबारा अभी हम मार्गणा की बात करेंगे तो ये बात ख्याल में आ जाएगी। याद नहीं रहते, पहले में पहले समझना है ऐसा क्यों कहा, उसका अर्थ ख्याल में आता है कि नहीं, बस इतनी बात रखना। हाँ, बाद में भूल जाए कोई बात नहीं, अभी तो इतना तो है ना, जब पढ़ रहे तब ख्याल में आता है कि नहीं आता है, उसका रीजनिंग ख्याल में आता है, बाद में भूल जाओ कोई माफ है आपको, है ना, अलाउड है। यानी औदारिक शरीर अंगोपांग का निरंतर बंध नीचे के देवों में क्यों नहीं है? क्योंकि भवनत्रिक और सौधर्म ईशान ये देव हर अंतर्मूर्त में, मिथ्या दृष्टि सासाधन की बात चल रही है, हर अंतर्मूर्त में एक इंद्रिय जाति पंचेंद्रिय जाति बांध रहे, कभी मनुष्य गति, कभी मनुष्य गति के साथ पंचेंद्रिय जाति बांधेगी, तिर्यंच गति बांधते कभी, तब उसमें भी कभी एक इंद्रिय के साथ तिर्यंच गति, कभी पंचेंद्रिय के साथ तिर्यंच गति बांध रहे, इसलिए उसके लिए वो अंगोपांग का बंध सांतर लिया। बाकी मनुष्यादि में तो हो, जब वो मनुष्य भी जीव जब एक इंद्रिय का बंध कर रहे हैं, तब वो अंगोपांग नहीं बांध रहे हैं। देव और नारकियों की बात चल रही थी, पर देव और नारकी जो है वो भले एक इंद्रिय का बंध करे या न करे, नारकी तो करते ही नहीं है, देव में ही कर सकते। औदारिक शरीर हमेशा बांधेगे कि नहीं बांधेगे? क्योंकि देवों में पहला गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक उनके कौन सी प्रकृतियां यानी कौन से बंधेंगे? औदारिक शरीर ही तो बंधेगा। अंगोपांग ऑप्शनल है नीचे के देवों के लिए, ये यहाँ कहना चाहते हैं। इसलिए अंगोपांग को सांतर में लिया, औदारिक शरीर को निरंतर में लिया। और महेंद्र के ऊपर तो अंगोपांग बांधेगी क्योंकि वो त्रस का ही बंद कर रहे हैं, और तीसरे चौथे वाले तो बांधेंगे क्योंकि वो पंचेंद्रीय जाति का ही बंद करेंगे। ख्याल में है? अभी यहाँ ही रुकेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनं सदा देत हो नू। मैं बच्चा।